हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है और सबसे मैं सभी उपस्थित भक्तगणों से जो है मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि मैं श्रीमद् भागवतम की ठीक से सेवा कर सकूँ। स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट हिज होलीनेस भक्ति भाद्र गोविंद स्वामी महाराज टू ब्लेस मी सो दैट आई कैन परफॉर्म अ सर्विस ऑफ रेंडरिंग भागवतम इन एन इक्विबल एंड सुटेबल मैनर। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, कई जो भक्त लोग रेगुलरली आते हैं सुनते हैं कि अभी तक जो है ये क्रम बेसिक इतिहास बता रहा है शुरू से मथुरा का, और मथुरा से जो है ये कंस के जो ये भोज परिवार जो है इसके विषय में। तो कंस भी यहाँ पर अभी कंस ठीक से राजा नहीं बना इस केस में, अभी वो राजकुमारी है, मगर वो राजकुमार होते हुए भी जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरीके से बर्ताव करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि वो राजा ही हो। और यहाँ पर खास तौर पर जो है बड़ा विचित्र एक और काफ़ी विचित्र भी और काफ़ी डरावना जो है एक माहौल पैदा हो जाता है जहाँ पर जब आकाशवाणी होती है और कंस जो है आकाशवाणी सुन के, आकाशवाणी मतलब देवताओं से क्योंकि दैव वाणी, सो देवताओं के द्वारा जो है ये आकाश से जो है आकाशवाणी होती है कि आपका आपकी जो मृत्यु है आपके बहन की जो बेटे होंगे आठवां बेटा होगा उससे होगी। और सुन के जो है फिर उसके बाद कंस जो सब जानते हैं फौरन जो है तैयार हो जाते हैं अपने अपनी बहन को नई लवेली दुल्हन प्रैक्टिकली स्पीकिंग और उनको मारने के लिए। और किसी तरीके से वसुदेव जो है उनको समझा बुझा के जो है राजी करा लेते हैं इसके लिए एक शर्त पे कि मैं जो भी हमारे बच्चे होंगे वो आपके हाथ सौंप दूंगा, उसके बाद आप जो ठीक समझे आप कीजिएगा। और इसके चलते जो है आगे अब हम देखेंगे कि उसके बाद ऑफ कोर्स नारद मुनि आते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? और क्लियर अच्छा ये ऐसे ओके, मैं भी इसका बेस कम करने ट्रेबल बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा, मेरी आवाज़ में ऑलरेडी बहुत सारे बेस है। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर नारद मुनि उस वक्त जो है बाद में नारद मुनि आते हैं इस सिचुएशन के अंदर। यद्यपि पहले छोड़ देते हैं कंस जो पहला बेटा जब वसुदेव लेके आते हैं तो क्या कंस भी हैरान हो जाता है, पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं वो भी हैरान हो जाते हैं वसुदेव की जो है निष्ठा को देखकर, उनकी सिंसियरिटी को देखकर और छोड़ देते हैं। मगर उसके बाद जो है नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आके जो है कुछ विशेष बात कंस को ऐसा कुछ पट्टी पढ़ा जाते हैं जिसके बाद जो है कंस का विचार बदल जाते हैं। तो वहाँ पर जो है हम नारद मुनि के चले जाने के फौरन बाद जो है क्या होता है वो ये श्लोक है। ठीक, हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 65-66, उसके बाद सिर्फ दो तीन श्लोक की जो है शेष रह जाएंगे इस अध्याय के लिए। ऋषिर् विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसंभूतम् विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वासुदेवं च निर्ग्रया निगढैर्गृहे जातं अहं पुत्रं तयोरजना संख्या ऋषिर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसंभूतम् विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वासुदेवं च निर्गया निगढैर्गृहे जातं अहं पुत्रं तयोर अजन संकया ऋषेर्विनिर्गमेकंशो यदुन्मत्वा श्रुणानिति देवक्या गर्भसम्भुतम् विष्णुं च स्वावदं प्रति देवकिं वासुदेवं च निर्गया निगडगृहे जातं जातं अहं पुत्रं तयोरजना शङ्कया. तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद के शब्दार्थ हमारे पीछे धार आई है. ऋषे नारद ऋषि के विनिर्गमे चले जाने पर कंसः कंस के कंस ने यदुन समस्त यदुवंशियों को मत्वा सोचकर सुरान देवता के रूप में इति इस तरह देवक्या देवकी के गर्भसंभूतम गर्भ से उत्पन्न संताने विष्णुम विष्णु के रूप में स्वीकार करते हुए च तथा स्ववधम प्रति विष्णु से अपनी मृत्यु के भय से देवकिम देवकी को क्यों वासुदेवम च तथा उसके पति वसुदेव को निगृह बंदी बनाकर निगड़ई लोहे की जंजीरों से गृहे गृह पर ही घर पर ही जातम जातम एक के बाद एक उत्पन्न होने वाले अहन मार डाला पुत्रम पुत्रों को तयो वसुदेव तथा देवकी के अजन शंकया इस भय से कि वे विष्णु न हो. धन्यवाद. अनुवाद सुनिए. नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है. अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरें डाल दी. कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु न हो एक एक करके मार डाला. तात्पर्य सुनिए. इस श्लोक की टीका करते हुए श्री शिलजीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि नारद मुनि ने कंस को यह जानकारी कैसे दी. यह घटना हरिवंश वर्णित है. देवयोग से नारद मुनि कंस के को देखने गए तो कंस ने उनका स्वागत किया. इसलिए नारद ने उसे बतलाया कि देवकी का कोई एक पुत्र विष्णु होगा. क्योंकि कंस का वध विष्णु द्वारा होना था इसलिए नारद मुनि ने सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा जाए. नारद का उद्देश्य था कि इन संतानों की हत्या करने से कंस के पापकर्म बढ़ेंगे जिससे शीघ्र ही उसे मारने के लिए कृष्ण अवतरित होंगे. नारद मुनि से आदेश पाकर कंस ने एक एक करके देवकी के सारे पुत्रों को मार डाला. तात्पर्य तो आगे भी है पर नारद मुनि के आप देख सकते हैं नारद मुनि का क्या रोल है कि उनके पाप कर्म बढ़ा दिए. चलिए आगे देखते हैं. अजन शंकया शब्द सूचित करता है कि विष्णु कभी जन्म नहीं लेते अजन. अतः कृष्ण के रूप में उन्होंने सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया मानुषम तनुमाश्रितम. कंस ने देवकी तथा वसुदेव से उत्पन्न सारे शिशुओं को मारने का प्रयास किया। यद्यपि वह जानता था कि यदि विष्णु उत्पन्न हुए तो उनका वध नहीं हो सकता। वास्तव में हुआ भी ऐसा कि जब विष्णु कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो कंस उन्हें मार नहीं पाया। जय श्री श्री राधा राधिकन भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम श्री गुरु निताय की जय। जगन्नाथ बल्ल सुभद्र महाराज। तो पर प्रत्युत भविष्यवाणी के अनुसार वह उन्हीं के द्वारा मारा गया। यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि कृष्ण का जन्म दिव्य विधि से होता है और वे असुरों को मारने के लिए लीला करते हैं, किंतु उनका वध नहीं किया जा सकता। जब शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण को इस तरह समझ लिया जाता है तो मनुष्य अमर हो जाता है। भगवान ने भगवद गीता के 4 अध्याय के 9 श्लोक में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहर पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे प्रादुर्भाव तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है इस श्लोक का। और जैसे कि यहाँ पर एक अगर आपने तात्पर्य जैसे आपने सुना तो इसमें एक बहुत ही टेढ़ा विषय है कि नारद जो है कि भक्तों का शोभा देता है कि जाके किसी को भड़का दो कि मार डालो सबको और वो भी कौन, नवजात शिशु, बिल्कुल बच्चा, इसका तो कोई दोष भी नहीं है, अभी अभी पैदा हुआ है। और वो पहले मार नहीं रहा था, वो असुर था कंस, और वो बच्चे नहीं मार रहा था, ये 12 महाजनों में से श्रेष्ठ है, और ये जाकर जो है उसको भड़का दिया जाके कि मार दो सबको। और चाहे जो भी वजह है कि कृष्ण का आविर्भाव जल्दी करने के लिए समाओ, तो कितना कैसा लग रहा है ये विचार, आप करना चाहेंगे ऐसा कभी ऐसी नौबत आई तो? हाँ, क्या समझते हैं हम में से कौन कौन करना चाहेगा ऐसा? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जैसे कोई जवाब नहीं दे रहा तो मैं आपके जवाब को ना समझू चलिए इसके लिए आपको अतिरिक्त तात्पर्य देखने की जरूरत है अतिरिक्त तात्पर्य, इसलिए श्री प्रभुपाद के साजने से जो है पीछे अतिरिक्त तात्पर्य दिया हुआ है। और जो ये अध्याय है इसकी भूमिका भी दी हुई है, इन दोनों को मिला के ये गुत्थी थोड़ी और सुलझेगी। आइए देखते हैं। अगर ये आप अतिरिक्त तात्पर्य अगर आपके पास भागवतम अगर आपके पास मौजूद है तो आप देखेंगे अतिरिक्त तात्पर्य में जहाँ पर तात्पर्य खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट वहाँ एक श्लोक है, एक श्लोक जोड़ा हुआ है जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के हिसाब से ये भागवतम का एक एडिशनल वर्स है पीछे है, बट यहाँ पर इसके हाँ ये अतिरिक्त श्लोक के अंदर ही जो है यस ये जो अतिरिक्त ये पूरा एक अतिरिक्त श्लोक जो है दिया गया है भागवतम का एक अतिरिक्त श्लोक यहाँ पर दिया गया है और वो अतिरिक्त श्लोक इस प्रकार से है, अथ कंसा उपागम्य नारदो ब्रह्मनंदना एकांतमपु संगया वाक्यमेतद वाचः। इसका मतलब तत्पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद कंस के पास गए, किसके पश्चात ये जो अभी हुआ ये सेम श्लोक ठीक है, गए और एकांत स्थान में उन्होंने उसे निम्नलिखित जानकारी दी, वही जानकारी जो जीव गोस्वामी हरिवंश से उद्धृत कर रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य भी दिया है, महान मुनि नारद स्वर्ग से, अभी कहाँ थे महान मुनि, स्वर्ग में थे पहले, स्वर्ग से मथुरा आए और उन्होंने कंस के पास अपना दूत भेजा ठीक है। जब दूत ने कंस के पास जाकर नारद के आने की जानकारी दी तो असुरों का मुखिया कंस ठीक है, असुरों का मुखिया ठीक है, अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही उनके स्वागतार्थ अपने महल से बाहर आया। इतना शिष्टाचार था उसके अंदर, वजह जो भी हो। तो नारद मुनि सूर्य जैसे तेजस्वी थे, अग्नि जैसे शक्तिशाली थे और सभी प्रकार से प्राप्त कृत्यों से रहित थे। कंस ने अतिथि के रूप में सत्कार करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया और सूर्य सदृश देदीप्यमान सोने के सिंहासन पर बिठाया, प्रॉपर जो है रेस्पेक्ट वैष्णव टिकट। अगर आप इस्कॉन लॉज भी देखेंगे उसके अंदर यही चीजें दी हुई हैं, किसी भी वैष्णव को स्वागत करने का ये तरीका, उसे प्रणाम कीजिए, स्वागत कीजिए, उसको एक आसन दीजिए बैठने के लिए। वैसे नारद स्वर्ग के राजा के मित्र थे, अतएव उन्होंने उग्रसेन के पुत्र कंस से कहा, हे शूरवीर, मैं तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न हूं, अतएव मैं तुमसे कुछ गुप्त बातें कहूंगा। ठीक है, जब मैं नंदन कानन से चैत्ररथ जंगल से होकर यहां आ रहा था तो मैंने देवताओं की एक विशाल सभा देखी। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक से आ रहे थे। ठीक है, और ये देवता मेरे साथ सुमेरु पर्वत तक आए। ठीक है ना, अगर आप जियोग्राफी देखेंगे तो हम अनेक तीर्थ स्थलों में गए, तीर्थ यात्रा में गए थे सर, देवता नारद मुनि के साथ। ठीक है ना, सो टूर यात्रा लेके गए थे नारद मुनि, और अंत में हमने पवित्र गंगा नदी के दर्शन किए। जब ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ सुमेरु पर्वत पर मंत्रणा कर रहे थे, वहां मीटिंग हुई, तो मैं भी अपनी वीणा के साथ वहां उपस्थित था, मैं भी वहां था। मैं तुम्हें गुप्त रूप से बतलाऊंगा कि यह सभा तुम समेत सारे असुरों को मार डालने की योजना बनाने के लिए की गई थी। ओके, तो अब आप कह सकते हो कि भाई क्या है, तो लगाई बुझाई इधर की बात उधर कर रहे हैं, बट ही इज जस्ट स्पीकिंग व्हाट इट इज फैक्ट। लेकिन ट्रूथफुलनेस नॉट टू हाइड द फैक्ट्स। तो तुम्हारी छोटी बहन देवकी है ना, पूछ रहे हैं ना। और ये तथ्य है कि उसका आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। हरिवंश विष्णु पर्व पहला अध्याय श्लोक संख्या 216 एज इट इज। नारद पर कोई ये दोष आरोपण नहीं कर सकता कि उन्होंने देवकी के पुत्रों का वध करने के लिए कंस को प्रोत्साहित किया। ये जवाब है, इसीलिए यहां लिखे नारद मुनि तो मानव समाज के सतत शुभचिंतक हैं। वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके कृष्ण इस धरा पर अवतरित हो, जिससे देवताओं का समाज प्रसन्न हो और कंस तथा उसके मित्रों का कृष्ण द्वारा वध देखे। कंस को भी अपने कुकृत्यों से मोक्ष प्राप्त हो सके। ठीक है, नजरिया देखिए, इससे देवताओं तथा उनके अनुयायियों को परम प्रसन्नता होगी। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि नारद मुनि कभी कभी ऐसे कार्य करते थे जो देवताओं तथा असुरों को एक साथ लाभप्रद होते थे। इस प्रसंग में श्री वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में निम्नलिखित आधा श्लोक सम्मिलित किया है। असुरा सर्व एतद् लोको प्रदत्त वकारिणः, असुरगण सदा सदा ही मानव समाज के लिए उपद्रवित तत्व रहे हैं। सो ये बेसिक जवाब है। नारद मुनि का आइडिया जो है बच्चों को मरवाना नहीं था। नारद मुनि का बच्चे मर गए, मुनि का आइडिया ये नहीं था। नारद मुनि का आइडिया था कि भगवान का अवतरण जल्दी हो, देवता भी खुश हो, ये भी असुर भी तर जाए। सो दैट आइडिया किस तरीके से, तो नजरिया है। आप इधर से आप देखेंगे तो हो सकता है असल बच्चे मरवा दिए किसी के, ठीक है ना। मगर तो ये बड़ा विचित्र, इवन आप शुरू में भी भूमिका में भी जो है कुछ इस तरह की बात जो है श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, जहाँ पर अगर आप ये भी देखना चाहें प्रस्तावना, इस चैप्टर का जो भूमिका है वहाँ पर 1, 2, 3 यस। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया इसके अंदर नारद मुनि ने, मैं बीच में से पढ़ रहा हूँ, हाँ ये रहा। यद्यपि वसुदेव को कंस के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु कंस ने वसुदेव के से बालक को वापस ले जाने के लिए कहा। अब ये देखिए असुर के अंदर भी जो कितनी अच्छाई है, ठीक है ना। मगर क्यों है, पर उनको उनको विश्वास नहीं हो रहा था वसुदेव को, क्योंकि असुर का भरोसा नहीं है। सो अब हुआ भी यही, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था, देखेंगे क्यों। और ये उसे ये रहस्य बताया, माफ कीजिए, ले जाने के लिए कहा। परंतु बाद में जब नारद मुनि कंस के पास पहुंचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवतागण यदु तथा वृष्णिवंशियों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे आप कड़ियों को जोड़िए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जो है और एक वो दे रहे हैं कि ये सारे देवता जो है यदुओं में जन्म लेने की फिराक में, ठीक है ना। सो मारने की षड्यंत्र, तो कंस ने इन वंशों में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार डालने का निश्चय किया। ये वजह थी, कई बार आप सुनते होंगे ना कंस से सबको मरवा देगा, कि पागल था कि पागल नहीं था, उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण भी मारा जाएगा और सारे देवता भी मारे जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अतएव उसने वसुदेव तथा देव की दोनों ही की को बंदी बना लिया और एक एक करके उनके छह पुत्रों को मारता रहा। नारद ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व, देखिए उसने उन्होंने किया क्या, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि वह अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था जिसका वध विष्णु ने किया था। फलस्वरूप अब क्या हुआ, सुनते ही जो क्या हुआ, कंस यदुवंशियों तक का महान शत्रु बन गया, ठीक है। रिएक्शन है यहां तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया। अब उनका तो कोई लेना देना नहीं, वो तो जन्म ले चुके थे, ठीक है ना, वो तो दोबारा देवता हूं, ठीक है ना, बट बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि वह अकेले राजभोग करना चाहता था। अच्छा मौका है, डाल दो सबको अंदर। तो ये एक दो इसके अंदर चरित्र, एक तरफ नारद और एक तरफ कंस, आप ये दो अलग अलग चरित्र आप देख सकते हैं। नारद का अंडरस्टैंडिंग क्या है इनको इसको लेके कि फैक्ट बेसिकली, अगर जैसे आप जब ये कालनेमी वाला जन्म बताया तो ये बताया कि विष्णु ने मारा था, बट कालनेमी के जन्म से हम जो है हम क्या हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, इन छह बच्चों का क्या इंडिकेशन मिलता है ना, इनका तीसरा जन्म है, जैसे पिछले श्लोकों में जो है चर्चा हुई है कि पहले मरीचि के छह पुत्र, उसके बाद कालनेमी के छह पुत्र, अब देवकी के छह पुत्र। तो बेसिकली नारद मुनि ने क्या किया, एक शाप जो मिला हुआ था, जो फल था, उसका इस्तेमाल किया। तो शाप जब फलता है तो शाप फलना एक आम आदमी के नजरिए से शाप फलना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होती, यानी कि पाप का फल मिलना, शाप फलने का मतलब पाप का फल मिलना। तो बट नारद मुनि ने उसको इस्तेमाल किया, एक शाप को इस्तेमाल किया। आप सोचिए ये एक्सपर्टीज इस नजर से अगर हम नारद मुनि को देखें, एक शाप को इस्तेमाल किया, एक शिकार एक पत्थर से कितने शिकार की, शाप का इस्तेमाल किया, शाप फलित हुआ पहला, असुरों का उद्धार, देवताओं की प्रसन्नता और सबसे बड़ी चीज भगवान का शीघ्र आगमन। सो ये एक्सपर्टीज की एक 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 नारद मुनि के कैलिबर के भक्त की एक्सपर्टीज, उनकी उनकी जो दक्षता है, दक्ष जैसे 26 गुणम एक भक्तों के अंदर की, तो ये एक दक्षता की चरम सीमा कि शाप कभी जो है आप भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दक्षता पर निर्भर करते, एक आम साधक के लिए शाप इस्तेमाल नामुमकिन सा काम है भगवान की सेवा में, मगर शाप कभी उन्होंने किस तरीके से डाला, किस जगह पर किस मौके पर क्या बात करनी है, वो शाप फलित होगा, पर वो ऐसे फलित होगा कि उस शाप के फलित होने से ये कंस तर जाएगा और बाकी सारा मेन चीज भगवान का आगमन होगा। वो हमारे नजरिए से देखने में हो सकता है कि छह बच्चे मरवा दिए, और इसीलिए जो है इसे देखिए, क्योंकि यही फर्क है, जो जो साधक है और जो भक्त है दोनों, उनका नजरिया नारद मुनि को लेके, और जो ये साधक और भक्त नहीं है, नॉन डिवोटी जो अभक्त है, उनका नजरिया नारद मुनि, तभी उल्टा। तभी आम समाज में आप जाएंगे तो नारद मुनि के बारे में हमेशा इसी तरीके की धारणाएं हैं, है ना, नारद मुनि जो है घर में आग लगाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, झगड़े करवाते रहते हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो भक्त की अप्रिसिएशन अगर ठीक तरीके से नहीं होगी तो वो कैसे वो लोग जो है भगवान की भक्ति में आएंगे, बिकॉज उनके दिमाग में तो ही बैठ जाए कि ये भक्तों के ऐसा है, मैं तो बना बगैर भक्तों के ठीक हूँ, यानी जैसा इकंद सोच रहा था जी, ठीक है जी छोड़ दो। अब हमें भक्त क्या मॉरल स्टैंड पॉइंट से आप देखेंगे, अगर आप नैतिकता से देखेंगे तो कंस का स्टैंड ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जी बच्चों को छोड़ दिया था उसने, उल्टा नारद मुनि के कहने पर जो है बच्चे मरवा दी, उनका जो है नैतिक स्तर से आप देखोगे नारद मुनि को तो नारद का रोल उल्टा दिखेगा। इसीलिए भक्ति की डेफिनेशन जो उसका जो गौण लक्षण है वो यही है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये करे बगैर जो है आप शुद्ध भक्ति की अंडरस्टैंडिंग नामुमकिन है पैदा करना। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये कर्म के सिद्धांत से आने वाला सिस्टम, आदि या जो भौतिक ज्ञान के स्तर से या निर्विशेष ज्ञान के स्तर से आने वाली अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये ठीक है ये गलत है. सो क्या ठीक है क्या गलत है उसका अनुकूलन से कृष्ण अनुशीलनम. सो इस कसौटी पे कसा जाता जिससे हम ये देख तब हम जब देखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल आदर्श दृष्टिकोण बैठेगा कि नारद ये दृष्टिकोण पैदा करना जैसे नारद मुनि का था कि व्हाट प्लीजेस कृष्णा भगवान को क्या प्रसन्न कर रहा है बाकी सब बाद में. तो ये अंडरस्टैंडिंग तो वो इस काबिल बनना कि जब ऐसा भी एक सिचुएशन ऐसे भी हालात पैदा हो कि जो 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 प्रत्युत रूप से जो है जो वैसे सरसरी तौर पर जो है आपको अनैतिक लग रहा है वो दरअसल नैतिक है. सो ये जजमेंट पैदा करना तो ये एक 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 तरीके से क्यों क्योंकि यही नजरिया है. भगवान को जब अलग अलग लोग देखते हैं तो अलग अलग नजरिया होते हैं. भगवान का नजरिया नहीं होता. भगवान का नजरिया बराबर होता है सम्मोहम सर्वभूतेषु. मगर अब ये सम्मोह ये भगवान की तरफ से सम्मोहम सर्वभूतेषु जीव के तरफ से होता है कि क्या क्या अलग अलग नजरिया. जैसे अभी आगे जब ये भगवान खासतौर पर एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक भागवतम का आता है जब भगवान जो है क्या कहते हैं उसका रणभूमि में जाते हैं कंस वो जो अखाड़े में कंस के अखाड़े में जब भगवान जाते हैं और अलग अलग भक्त 10 तरह के अलग अलग रस 10 प्रकार की ऑडियंस है वहां पर 10 प्रकार की ऑडियंस उन्हें 10 तरीके से देख रही. लिहाजा भगवान उन 10 तरह के ऑडियंस से 10 तरीके से पेश आ रहे. भगवान की स्टार्टिंग 0-0 पे होती है सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न मे प्रिया. आप इधर से शुरू होते ये भजंती महाभक्त तो ये भजंती महाभक्तिया भी है और अभजंती भी है उसके साथ उस तरीके से भजंती वाले भजंती तरीके से तो देन वो इंट्रैक्शन होता. तो कंस बेसिकली अब हम नारद मुनि ये तो नारद मुनि का था. अब देखिए कंस कैसे देख रहे है ना वो भी इनफैक्ट नारद मुनि सेम नारद मुनि जो है 7th कैंटो में 7वें स्कंद में जो है पहले अध्याय के 41वां श्लोक है शायद पहला श्लोक है 31वां श्लोक है जहाँ पर जो है कह रहे हैं ना गोप्या कामात भयात कमसो द्वेषा चैद्यो नृपा आदेव नृपा संबंधात वृष्णया स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो कि गोपियां वो कैसे देखती गोपिया कामाद सो तो काम से गोपियों ने प्राप्त किया मगर यहाँ कमस भयात कमस भय से भय टेक्निकली आप अगर देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से तो भय जो है सेकेंडरी रसों में आते हैं गौण रसों में आते है ना 7 गौण रस में भय सो भयंकर तो भयंकर भय सो वो सेकेंडरी रसों में आते तो क्या कंस का रस क्या हुआ भगवान के साथ क्या समझ कंस का क्या रस हुआ भगवान के साथ एक्चुअली कोई रस नहीं हुआ भय कोई रस नहीं होगा अपने आप में क्योंकि रस जो है वो प्राइमरी होता है मुख्य रस के आधार पर गौण रस ऐड होता है मुख्य रस होते 5 जिसको हम स्थाई भाव कहते हैं भावभक्ति ऑनवर्ड जो चीज जो है आप वो जो है आप पोजीशन होते हैं भावभक्ति के स्टेज पे तो ये 5 मुख्य रस होते हैं ठीक है ना शांतदास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य इस पे आप फिक्स होते हैं इस फिक्सेशन के बाद जो है उसमें गौण रस की प्राधानता हो सकती है कई जगहों पर वो सर्टेन भगवान के साथ सर्टेन इंटरेक्शन में भगवान के साथ आदान प्रदान में ये जो गौण रस है उनकी प्राधानता होती है तो यही होती है मिक्सिंग ऑफ द रस जो आगे जाके होती तो ये केस जो है क्योंकि जो कंस का जो भाव है भगवान के लिए वह अनुकूल से कृष्ण अनुशीलन नहीं है प्रतिकूल है इसीलिए ये जो भाव है आपका जो भय का जो भाव है ये भाव इच्छाया है काइंड ऑफ कि छाया इसलिए है क्योंकि इसके अंदर भय भी जब आप होता है किसी से तो उसके साथ आपका संबंध होता है संबंध के अंदर अनुकूल संबंध के अंदर भय प्रतिकूल संबंध के अंदर भय जो है इट इज नेगेटिव होने की वजह से ये व्यक्ति विशेष के साथ जो है इसको हम जोड़ नहीं पाते फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, तो इसलिए ये इम्पर्सनल की तरफ चला जाता है। जब मुख्य रस का अभाव है और गौण रस दिखाई दे रहा है, जब ऐसा कोई के जैसे कि ये केस है कांस का रस, जैसे चेदी शिशुपाल का रस, जहां पर भी मुख्य, क्योंकि इनमें मुख्य रस का अभाव होगा क्योंकि अनुकूल नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्ति उसको अनुकूल बनाती है, अनुकूलन ये भक्ति बनाती है, अनुकूलता भक्ति बनाती है, यानी कि अनुकूल होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर मुख्य रस में स्थित होते हैं। वो जब नहीं है तो गौण रस के जब लक्षण आप देखते हैं, वो गौण रस जो है बगैर मुख्य रस के ये निर्विशेषवाद की तरफ लेके जाएगा, मतलब ब्रह्म निर्विशेषवाद नहीं, माफ कीजिए वापस लेता हूं, निर्विशेष ब्रह्म की तरफ लेके जाएगा। थोड़ा टेक्निकल है पर इसको ऐसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे कंस है, वो जब कृष्ण को देख रहा है, एक रिश्तेदारी है ना उसकी, क्या रिश्तेदारी है, वो मामा लगता है, मगर वो मामा वो भांजे की तरफ नहीं देख पा रहा, भांजा है मगर वो नहीं देख रहा, गेटिंग अपन, कॉन्ट्रडिक्शन कैसी है, भांजे होते हुए भी जो बतौर भांजा नहीं देख, जबकि भांजा है, अगर भांजा है तो इस श्लोक के हिसाब से जो यही जो सातवें स्कंद का श्लोक है, तो जैसे संबंधात वृष्णयाद उसमें शुमार होना चाहिए, वृष्णि संबंधी थे ना, तो भोज भी तो संबंधी है उसके, भोज कौन सा संबंधी नहीं, संबंधी होने के बावजूद वो उसको संबंधी नहीं देख पा रहा क्योंकि संबंध नहीं है, शत्रु तो संबंध नहीं, संबंध इधर से टेक्निकली संबंध है पर प्रैक्टिकली इन एक्शन संबंध नहीं है, तो ऐसा जहां पर वो है कॉन्ट्रडिक्शन है, बेसिक आइडिया में कॉन्ट्रडिक्शन है, संबंध होते हुए वो संबंध को जैसा है वैसा नहीं ले पा रहा, तो वो कहां लेके जाएगा, अटक गया ना मामला, संबंध के हिसाब से तो वात्सल्य होना चाहिए, तो वात्सल्य आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, सो वेयर शुड इट लीड टू, कहां लेके जाना चाहिए फिर मुझे, देयर फॉर निर्विशेष। तो आप पूछते हैं ना कि ये कैसे, ये श्लोक में सारा बराबर लगता है, ये गोपिया इस श्लोक में सभी का नाम ले दिया उन्होंने, नारद मुनि ने गोपियों का भी नाम ले दिया, कंस का भी नाम ले दी, चेदी आदय, आदय मतलब सारी बाकी राजा जरासंध इत्यादि, तो ये सारे ठीक है, तो ये दंत वक्र वगैरह सारे, अच्छा ये क्या और फिर आगे संबंधाद सारे संबंध, वृष्णि भी वो भी इसके अंदर आ गए, फिर आपके स्नेहाद जो स्नेह के पात्र पांडव यूयम, पांडव से परीक्षित से बात हो रही थी इस श्लोक के अंदर, और अपनी भी बात कर ली नारद मुनि ने कि हम तो हम जैसे जो मामूली भक्त हैं वो भक्ति से नारद मुनि, क्यों, क्योंकि इससे पहले सारी रिश्तेदारियों की बात की है उन्होंने, भाई गोपियों से तो भगवान की रिश्तेदारी है इस तरीके से, ठीक है ना, वृष्णियों से रिश्तेदारी है फैमिली की वजह से, इवन कंस की भी है बेशक वो इसको रिकग्नाइज करे ना, शिशुपाल की भी है बेकस वो रिकग्नाइज करे ना करे, तो ये सारे तो भगवान के अपने हैं, पांडव तुम भी हो ठीक है ना, तुम्हारे साथ भी, और तुम्हारे दादाजी को अपनी बहन दी उन्होंने, वो तुम सारे रिश्तेदार हैं, सिर्फ मैं ही बाहर वाला हूं, सो आई थिंक बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाट, कि वो रहते हुए भी उस चीज को ना लेने की वजह से, तो वही जो भय है तो वो भय फिर फेवरेबली काम नहीं करेगा, जो ये सेकेंडरी रस है भय जैसे जो रस है ये भगवान की उस लीला को बढ़ाते हैं, बढ़ाने का काम होता, तो इट इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव स्पिरिट को बढ़ाने का काम आता, और यहां पॉजिटिव रिलेशनशिप था देखा जाए तो, जन्म से कोई भगवान का रिश्तेदार हो आप सोचो, जन्म से रिश्तेदार है, बट ही कुडंट एक्सेप्ट इट, एंड देयरफॉर वो जो है वो मुड़ के भयात कमसा, और उसकी डेस्टिनेशन अलग हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है इवन कंस के अंदर, जैसे वो देखता है भगवान को जब ही, तो बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ जाता है उसका, जाहिर बात है, तो एट जो वहां पर जो है रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आठ अलग अलग इमोशंस इकट्ठे कंस के अंदर चलते हैं, सुनना चाहेंगे वो आठ इमोशंस क्या जी, आगे चलते हैं तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं ये भक्ति रसामृत सिंध में 31वें चैप्टर में, ये आठ इमोशंस हैं, देख सबसे पहले भगवान को देखते क्या आता है उसके अंदर, घमंड, ये क्या करेगा मेरा, ठीक है ना, मैं राजा हूं, पहला घमंड आता। उसके बाद इमीजिएटली घमंड के फौरन बाद अनुशोचना, हाय हाय इसी ने मेरे सारे दोस्त मार दिए। तो उसके साथ फौरन उसके बाद इमीजिएटली जो है विनम्रता भी आती है, जाके चुपचाप सरेंडर कर देता हूँ। उसके फौरन बाद इमीजिएटली उल्टा, नहीं मैं क्यों सरेंडर करूँ, डिटर्मिनेशन मैं कर लूंगा, मेरे तो बहुत सारे अभी बाकी हैं दोस्त यार, यहाँ पर ये चांदन मुश्रिक है सब है, अभी हम देखेंगे इनको, ये देख लेंगे इन्हें। फिर उसके बाद जो है फिर उसको याद आता है कि बेटा इसने बाएं हाथ से गोवर्धन उठाया है ये। फिर उसके बाद उसको शंका होती है, वो ये भगवान विष्णु ही है क्या है, तभी भी डाउट है। देन बहुत गुस्सा चढ़ता है इसके ऊपर उसको, अच्छा इसने ऐसा किया मेरे साथ, अभी तक मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद फौरन जो मूल चीज है, भाई मेरा क्या होगा। सो ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन इन कंस, तो डिफरेंट इमोशंस, बट ये कोई भी ये सारे डिफरेंट इमोशंस जो है, ये डिफरेंट इमोशंस उसको मदद नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज उसका मुख्य रसित नहीं है। वाई? बिकॉज इज नॉट फेवरेबल। तो ये इसीलिए ये भक्ति की जो वापस जाना, और नारद मुनि का इसमें बिल्कुल कंट्रास्ट करें कि इनकी अपरेंट हरकत कि बच्चे मरवा दिए, नहीं बच्चे नहीं मरवाए। सो वो किस पे बेस्ड है, क्या कसौटी क्या बन रही है? ये कसौटी बन रही है भक्ति की, वो जो बेसिक डेफिनेशन है अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञानकर्मादि अनावृतम अनुकूलस्य कृष्ण अनुशीलनम, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल रूप से सेवा। सो ये बड़ा बारीक मामला है इसके अंदर, यहीं पे समाप्त करेंगे, 5-7 मिनट है। किसी का कोई टिप्पणी है, कमेंट, कोई सवाल है? जी प्रभु जी,
हरे कृष्ण प्रभुजी, थैंक यू फॉर द लेक्चर, फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। प्रभुजी प्रश्न ये है कि जैसे नारद मुनि जी ने सबका अच्छा सोचा, असुरों का भी, ताकि उनका उद्धार हो सके, और देवताओं की भी प्रसन्नता, और उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए, और सबसे बड़ी बात भगवान को जल्दी से अवतरित करने के लिए, और ताकि उनकी लीलाएं जो है वो इंजॉय कर सके। पर इसके लिए जो उन्होंने सलाह दी वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, बट नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव उसकी इंटेंशन थी। भगवान किसी भी जीव के आने या जाने का समय जो है वो भगवान ने निश्चित कर रखा है। तो ये जो 6 पुत्र थे तो इनका भी आने और जाने का समय निश्चित था, नंबर एक। नंबर दो कि भगवान उनको पता है कि भगवान ने 8वें गर्भ से, देवकी के 8वें गर्भ से जो है वो आना है
जी।
तो उसमें शीघ्रता उन्होंने कैसे सोच ली, जब उन्होंने उनको पता है कि आना ही 8वें से है, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है, उनको विश्वास है कि आकाशवाणी हुई है, और उनको ये पता है कि जीव ने आने जाने का समय निश्चित है, वो कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में है नहीं। तो वो इस तरह कैसे सोच रहे हैं कि शीघ्र हो जाएगा, और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो शीघ्र नहीं होगा, देर लगेगी।
गुड गुड क्वेश्चन। तो ये सवाल पूछना लाजमी है, और ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं? इट इज कमिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लॉजिक, ठीक है ना। सो दैट इज द, यहाँ से जो शुरुआत होती है, एक तरफ लॉजिक है और एक तरफ डिवोशन है, ठीक है ना। लॉजिक हमें चाहिए होता है सो दैट वो इंटेलेक्ट को कन्विंस करे, लॉजिक हार्ट को कन्विंस नहीं करेगा, बिकॉज देन अनदर लॉजिक विल कम, ठीक है ना। सो दूसरा लॉजिक क्या आएगा, अभी आपके लॉजिक को काउंटर करने के लिए दूसरा लॉजिक क्या होगा, समय निश्चित होता है और जी के पास स्वतंत्रता होती है, ये दूसरा लॉजिक है। सो ही कैन ऑल्टर द आउटकम, गेटिंग माय पॉइंट? सो फिर इसमें से कौन से को पकड़े? जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए हर का, मेरा, हम सब का जो है मरने का समय निश्चित है, यही कहना चाहते हैं, है ना, और जीने और जन्म लेने का भी समय निश्चित है,
और भविष्यवाणी।
लेट मी फिनिश You can add बाद में, if you're not satisfied, आप add कर सकते, ठीक है ना। तो पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी का भी कत्ल कर सकता हूँ। सो हाउ इज इट, So this is the understanding logic versus logic. ये कभी भी आपको जो है satisfy नहीं करेगा आपके heart को. मुझे logical आप कह सकते हैं इस चीज़ को unless and until जो platform है तो जब तक आप logical platform को cross नहीं कर पा रहे. So you need something to satisfy that platform. तो लॉजिकली जब इसीलिए जब आप भगवान की लीलाओं को लॉजिक के प्लेटफॉर्म से देखते हैं तो एक स्टेज पर बात रुक जाती है. यानी जिसका जितना लॉजिकल कैपेबिलिटी है वो वहां पर जाके उसकी गाड़ी वहां रुक जाती है. जैसे आपका ये सवाल उठा, मेरा इस तरह का कंटेंशन हो सकता है कि जी यूं क्यों. तो इसीलिए ये सारे जो लॉजिक हैं डिवाइन अरेंजमेंट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं. डिवाइन अरेंजमेंट जो है वो लॉजिक उसके रास्ता रोकने के लिए नहीं होता, लॉजिक उसके रास्ते को हमवार करने के लिए होता. ठीक है ना. इसके अंदर कैसे, अब जी उसका काल निश्चित था. ठीक है, लिखा हुआ काल निश्चित था. अब काल क्या निश्चित था? काल निश्चित था कि वो जन्म लेंगे, उसके पेट से जन्म लेंगे और मारे जाएंगे. ठीक है ना. कब मारे जाएंगे ये कहीं पर डिफाइंड नहीं है कि जन्म लेते ही मारे जाएंगे. ये बोला था जो श्राप था हिरण्यकशिपु का कि मारे जाएंगे, और काल और मरीचिका के वजह से हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हुए. तो ये जो एक्सेलरेशन है कि मार दो अभी मार दो, अब आप ठीक है ना, अब बिल्कुल आपको इसका, अब इसका बिल्कुल उलट, जो मतलब जो मटेरियल इम्पॉसिबल काम है, मरा हुआ कोई लौट के आया आज तक? बट वी सी लेटर चैप्टर्स में कि यही सारे छह के छह पुत्र जो है वापस लौट के आते हैं, कृष्णा लेके आते हैं देवकी के लिए. सो कृष्णा मीन्स दिस. इसीलिए जी गोस्वामी जो है जब शुरुआत में तत्व संदर्भ शुरू करते हैं, क्योंकि भागवतम का एक्सप्लेनेशन है, तो वहां पर जीव गोस्वामी शुरू में ही बोलते हैं कि अनलेस एंड अनटिल आप अचिंत्य शक्ति के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं, देयर इज नो पॉइंट डिस्कशन कृष्णा. और अचिंत्य शक्ति का क्या मतलब है? कर्तुम अकर्तुम अन्यत्र कर्तम इति समर्थ. कर्तुम का क्या मतलब है? जो हो सकता है. लॉजिक आ जाता है जो हो सकता है, और जो बियॉन्ड लॉजिक होता है यानी जो नहीं हो सकता वो बियॉन्ड लॉजिक है. अकर्तुम, ठीक हो गया. ये हो गया लॉजिक का प्लेटफॉर्म कवर कर लिया. आपको तीसरा ऑप्शन हो सकता है, या कोई चीज दुनिया में हो सकती है या नहीं हो सकती, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, सच झूठ, यही होता है ना. दैट्स व्हाई ब्रिंग्स द थर्ड एंगल अन्यत्र कर्तुम, कि जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता, इसके अलावा अगर कोई थर्ड ऑप्शन है, इति समर्थ, वो इसमें समर्थ है, देयरफॉर ही इज कृष्णा. दैट मीन्स विच इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लॉजिक एंड विच गोज बियॉन्ड लॉजिक. सो दैट इज कृष्णा बिकॉज दैट हैज हिज ओन लॉजिक. अरे अरे क्या हुआ? मैं कोई जोक नहीं मारा. संजीदा माहौल है ना. तो द आइडिया इज, शुक्रिया. तो आइडिया इज बियॉन्ड, अगर हर चीज लॉजिक क्या कहती है, हर चीज के पीछे लॉजिक है. दिस इज न्याय. नाउ आई एम कमिंग टू द प्लेटफॉर्म ऑफ न्याय. सो इफ हर चीज के पीछे लॉजिक है, तो ऐसी भी कोई चीज होती होगी जो लॉजिक के बियॉन्ड होगी. दैट इज अनदर लॉजिक. दैट्स हाउ यू ट्रांसेंड लॉजिक. दैट्स अन्यत्र कर्तुम. तो ये वो चीज, जब ट्रांसेंडल प्लेटफॉर्म पे नारद मुनि जैसे व्यक्ति इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दे हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटीज. इसीलिए मैंने बोला कि एक अभी जब हम बात कर रहे हैं नारद मुनि की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ साधक. तो इसीलिए मैंने ये चीज बोला कि हु कैन डू दोज थिंग. जैसे कि जो मैंने शुरुआत में इसलिए बात का मैंने रखी थी, शाप को इस्तेमाल करना. तो जैसे आपने बोला वो शाप अगर नारद मुनि इस्तेमाल नहीं करता फल जाता अपने हिसाब में, ये बात नहीं है कि फल जाता, बात ये कि मैंने इस्तेमाल किया, माई एबिलिटी टू यूज इट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. नॉट जस्ट दैट, प्राइमरीली इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स ये थे. ये असुर जो है इसका जितना हो सकता है मोक्ष, इसका ये हो सकता है, देवताओं का जो इनका इनका पर्पस है वो भी पूरा हो जाएगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन हु इज बियॉन्ड दैट कम्प्रिहेंशन लेवल. इसलिए ये चीज इस तरीके से, नहीं तो बिल्कुल लॉजिकली तो ही लगेगा कि तो सबको ही मरना था तो मर जाता, ये नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता. ठीक है ना. सो ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? ये अंडरस्टैंडिंग आती है जिसको हम कर्म मीमांसा फिलॉसफी कहते हैं. देयर इज कर्म एंड देयर इज फल एंड देयर इज नो वन इन बिटवीन. है ना, कि कर्म करो फल मिलेगा, ये डिफीट हो जाती है. यानी कि ये डिफीट, ये सिद्धांत भगवान के रोल को डिफीट करने के लिए बनाया, क्योंकि एक कर्म है और एक करता है, बस खत्म, उसको फल मिल जाएगा। तो फल कौन देगा, देगा नहीं देगा, कितना देगा, कम देगा ज्यादा देगा, तो ये सारा का सारा जो खेल है बीच में। यहां पर अन्यत्र कर्तुम, दिस इज अन्यत्र कर्तुम, क्यों कि कर्तुम के हिसाब से ये होना चाहिए, भक्ति अन्यत्र कर्तुम, नहीं हुआ ऐसा होना था मगर ऐसा नहीं हुआ। सो दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट एंगल हैज टू बी, ये दिमाग में रख के चलने की जरूरत पड़ती है इस केस में, देन आप चीजों को जो है हार्मोनाइज करने में आसानी होती, नहीं तो हार्मोनाइज करना मुश्किल है। ये कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू कर्मा ही होना चाहिए था। सो बट व्हाट इट इज, किस तरीके से हुआ है, क्या उसके अंदर जो है फेरबदल, डिवोटीज दे कैन अफेक्ट दैट चेंज, दे कैन अफेक्ट दैट चेंज। जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, जब एक आम आदमी साधना भक्ति का जिम्मेदारी उठाता है, आदव गुरु पादाश्रय तथा कृष्ण शिक्षा दीक्षादि शिक्षणम, जैसे ही वो सबमिट करता है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को, उसके बाद उसके कर्म कैसे चेंज होते, ये कैसे होता है, ये इसका मतलब ये नहीं कर्म खत्म हो जाता, कर्म स्टार्ट्स एक्टिंग फेवरेबली, सेम कर्मा जो है जो पहले उसके जन्म बुक करता, वो सेम कर्मा जो है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है भगवान के करीब ले जाने के लिए। तो द सेम वे दैट कर्मा, जो कि उन छह बच्चों का कर्मा है, बट देन यू सी द कर्मा, छह बच्चों का क्या कर्मा था, आप कर्मा की बात कर रहे हैं ना, आप सोचे एक असुर ने श्राप दिया था, वो क्या श्राप दिया था कि जो तेरे बच्चे, अब जिनके बच्चे कालनी में, तेरा बाप जो तुम्हें मारेगा, पर उसका श्राप था तो बाप मारेगा, और वो पैदा किनके, उस पर असुर का क्या कंट्रोल है, मुझे बताइए कि देवकी के गर्भ से छह बच्चे भगवान के भाई हैं। सो दोस थिंग्स आर बियॉन्ड लॉजिक, कि असुर की क्या औकात की ये वो दे दे, और वो भी अभिशाप, असुर ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया था उसको, अभिशाप ही दिया था, बट दैट अभिशाप इज कहां पर, देवकी के पुत्र। So it's, unless अन्यत्र कर्तुम aspect इसके अंदर आप लेके आते हो, which applies on the transcendental platform, Krishna and delegate कर सकते Krishna to his devotees, almost impossible इस चीज को harmonize करना। और ये बाहर भी, बाहर यही तो होता है, जो practicing devotees नहीं होते हैं, जिनको ये सिद्धांत नहीं, जो तभी आचार पूर्ववर्ती आचार्य के टिके, अगर ये नहीं हो तो बंदा हमेशा गलत सोचता है। नारद मुनि ये लगाई बुझाई करने का काम करते हैं, कृष्णा ये पॉलिटिशियन था, ठीक है ना, ये पांच पांडव ये साथ साथ है, इन्होंने धोखे से कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीती, सारा ऐसे ही है, उल्टी महाभारत। अनलेस एंड अनटिल, इसीलिए इसी के लिए एक पहला कसौटी है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान जस्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञातो विषते तदनन्तरम्, तत्व ज्ञान बाद में, पहले भक्त, देन उसका तत्व ज्ञान जो है ठीक होगा। दैट मीन्स ही हैज टू डेडिकेट, ही हैज टू फेवरेबल, अनुकूल से कृष्णा अनुशील, उसके बाद ये सब ठीक चलेगा, व्हाट कम्स फर्स्ट। सो ये सारा ये अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज यू कैन गो। मुझे याद है एक बार, कई सालों पहले की बात है, मोहन प्रभु कहीं पे प्रीचिंग कर रहे थे IIT दिल्ली में, और IIT दिल्ली में यही सब्जेक्ट था, जन्माष्टमी के टाइम की बात थी, और उन्होंने बोला ऐसे कि भगवान जो है ये कंस ने मार डाला उनके छह बच्चों को, देवकी को पकड़ लिया था ऐसे ऐसे, और फिर तो वहाँ पे एक IIT लड़का बैठा था, जैसे होते हैं लॉजिकल, बिकॉज वो लॉजिकल प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आ रहा है, ही इज नॉट येट अ डेवोटी, बट वो लॉजिकल, उसने बोला कि तो इसकी जरूरत ही क्या थी आठ बच्चों को मारने की, अंश ये जो देवकी और वसुदेव है दोनों को अलग अलग वो क्या कहते हैं उसमें रख देते जेलों में, तो मिलन होता ही नहीं, बच्चे होते ही नहीं, लॉजिक ना, एज अ लॉजिक सब। तो प्रभु जी ने उसमें जवाब भी दिया था, यस, क्योंकि कंस IITian नहीं था। क्या जवाब दे फिर उसको, गेट माय पॉइंट, बिकॉज कमिंग फॉर द कर्म मीमांसा फिलोसफी, मैं सोच रहा हूं कि आई कैन ऑल्टर इट, उस तरीके से वो इस तरीके से ऑल्टर नहीं होता, वो कर्म, कर्मा ऑल्टर होता है भक्ति के स्ट्रेंथ से। सो देयरफॉर चीज ऐसी,
थैंक यू प्रभु जी,
ठीक है, और ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय. मिताई गौर सत्यनाथ प्रेमानंदे.